अब आगे है सूरत यूसुफ। आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल अम्बिया कराम के नामों पे सूरतें हैं, सूरत यूनुस, फिर हूद, फिर यूसुफ। सूरत यूसुफ बहुत ही यूनिक सूरह है। पूरी सूरत में बस एक ही किस्सा है, एक ही यकलख्त नाजिल होती है, और मक्का वालों के वो सवालात जो मदीना से आए हुए सवालात के जवाब में उन्होंने पूछे थे, उस पर ये पूरी सूरत नाजिल हुई, जिसका पहले से कभी किसी ने तस्करा भी नहीं देखा था। तो थोड़ा सा पस मंज़र देख लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो सूरत यूसुफ के 12 में से 11 रुकू, यानी आउट ऑफ 12, 11 रुकू हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पुरहिकमत, हसीन और दिलचस्प वाक़े के बयान पर मुश्तमिल हैं। यानी बिल्कुल पढ़ते हुए एक स्टोरी की फीलिंग आती है, और कहानी सुनते हुए पढ़ते हुए दिल नहीं वैसे करता कि बीच में कोई इंटरप्ट करे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। मजमूई तौर पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से 10 बेटे पहली बीवी से और 2 बेटे दूसरी बीवी से थे। ये बेटे और इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाई जो सगे थे इन माँ से, उनका नाम बिनजामीन था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी में से थे, और उम्र में 10 सौतेले भाइयों से छोटे थे। सौतेले भाई हज़रत यूसुफ से हसद करते थे, जिसकी तफसील इस सूरत में वाक़े से ही हमें मिलती है। अब ये नाजिल कब हुई, तो इस सूरत की शान नज़ुल भी देखनी होगी। ये सूरत मुबारका मक्की दौर के आखिर में नाजिल हुई। इसका शान नज़ुल ये है कि यहूद ने कुरैश मक्का के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए सवाल पूछा कि बनी इसराइल का वतन यानी बनी इसराइल का फ़लस्तीन के इलाके कनान से मिस्र की तरफ हिजरत का सबब क्या था। ये तो आप भी अब समझ चुके होंगे ना कि पिछले अंबिया कराम अक्सर मुल्क शाम और फ़लस्तीन के इलाके से थे, तो कहा कि ये मिस्र में कैसे आ गए फ़लस्तीन के एक छोटे से गांव कनान से उठकर। अहले अरब इस सवाल के जवाब से नावाकिफ थे। अल्लाह ताला ने इस सवाल के जवाब में इस सूरत मुबारका को नाजिल किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इम्तिहान में सुरखरू किया, और ये सूरत आपकी रिसालत की हक्कानियत को भी साबित करती है कि आप सच्चे नबी थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा वली कैफियती। तो आइए देखिए सूरत यूसुफ के मजामीन का तज़िया। आयत 1 से 6 तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुशगुन ख्वाब है, जो बड़ा अनयूजल था। 7 से 18 बिरादराने यूसुफ की साजिश थी, प्लॉटिंग थी, सोचा क्या, किया क्या, कहा क्या, बाप के साथ बातें क्या की, ऊपर की बातें नीचे और नीचे की बातें ऊपर करने वाला अंदाज़ है। फिर 19 से 34 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अज़ीज़े मिस्र के घर में हैं, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं। पहले बाप की मोहब्बत से निकाले गए और कुएं में फेंके गए, कुएं से निकले तो अज़ीज़े मिस्र के घर में बड़ी इज्जत से रखे गए, और उधर से फिर आय 35 से 53 में हम देखते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में चले जाते हैं, भेज दिए जाते हैं, बल्कि कह लीजिए बिल्कुल सच्चे यूसुफ, बेऐब यूसुफ जेल में चले गए, और शायद 7 साल रहे। कितना सब्र, कितना हौसला, इनका लॉकडाउन इतना लंबा था, और जेल ऐसी खूबसूरत तो नहीं होगी जैसे आज हमारे घर हैं, फिर भी ना शुक्री करे कोई तो कर ले। फिर 54 से 57 तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाह मिस्र के दरबार में पेश किए जाते हैं, ये हिस्सा हम 13वें पारे में पढ़ेंगे। और फिर 58 से 93 बिरादरान यूसुफ दरबार यूसुफ में है, और 54 से 101 हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की मिस्र में आमद, यानी फिर 30-40 लोग जो थे वो मिस्र में ही बुला लिए गए। और 102 से 111 आखिरी हिस्सा सूरत का इंसानों की अक्सरियत के तर्ज अमल पर बसीरत अफरोज तबसरा, यानी अक्सर लोग जो खुद को ईमान वाले कहते हैं या समझते हैं वो भी बाज़ दफ़ा शिर्क में होते हैं। तो ये सूरत का एक ओवरव्यू था। अब चलते हैं आयात के साथ थोड़ा शॉर्ट व्यू में। आयत 1 से 3 कुरान करीम एक आम फहम किताब है। दिल का आयातुल किताब बिल मुबीन, ये नहीं हो सकता कि किताब हो हिदायत के लिए और समझ ही ना आए, और आए तो सिर्फ चंद उलमा को, मुफ्तीस को, नहीं ऐसा हो सकता। फिर अमल कैसे करेंगे? आप कुकिंग रेसिपी बुक लें और वो इतनी इंटेलेक्चुअल जुबान में लिखी हो तो आपको समझ ही ना आए, तो कैसे खाना बनाएंगे? ड्राइविंग करने वाले के हाथ में वो बुक थमा दी जाए जिसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड हो, समझ ही कुछ ना आए, तो वो तो हादसे का शिकार होगा। आज हमने इस किताब को ना समझकर यही जुल्म किया कि हर लम्हे में हादसे होते होते बचते हैं। आयत 4 से 6 हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का खूबसूरत ख्वाब है। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بہت ہی خوبصورت خواب. پھر آیت 7 سے 18, برادران یوسف کی سازش ہے. باپ کے پاس آ کر باتیں اتنی خوبصورت کرتے ہیں لیکن دل میں پلان بڑے برے تھے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیت للسائلین. اصل میں یہ اس سوال کا جواب بھی تھا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا تھا. 19 سے 22, حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں, یعنی کنویں سے جن لوگوں نے نکالا انہوں نے ان کو بھیجا, اور اسی طرح حالات کے رحم و کرم پہ ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام اس دور کی سپر پاور, بہت ہی ایڈوانس ملک مصر میں پہنچا دیے گئے. اور یوسف عزیز مصر کے گھر میں جو گئے تو وہ وزیر خزانہ تھا, یعنی اس وقت کا ایک بہت بڑا اعلیٰ کھاتا پیتا شخص تھا, حکومت میں اس کا دخل تھا. اللہ تعالیٰ اصل میں راستے بنا رہے تھے یوسف کی ترقی کے. کل یوسف علیہ السلام نے اس ملک میں تبلیغ کرنی تھی, جیسے موسیٰ کو بچپن میں فرعون کے گھر میں پلوایا. تو یہ اصل میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں میں کانفیڈنس آئے, اور لوگ جب پہلے سے کسی بھی چیز کے لیے یوز ٹو ہوتے ہیں تو پھر وہ کانفیڈنس کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں. اس میں ہم آج کے مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جن کو باہر جا کر اگر تبلیغ کرنی ہے تو ان کو پھر کچھ حصہ وہاں جا کر رہنا بھی ہوگا, ورنہ تو انسان دیکھے کہ کتنے ہیرے موتی ہیں جو مدرسوں سے ہر سال نکلتے ہیں, لیکن کسی ایسے شخص پہ جو 4 لفظ انگلش کے بولے یا گٹ پٹ کرے وہ اسے مروب ہونے لگیں گے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آیت 23 سے 29, حضرت یوسف علیہ السلام پاکیزہ کردار کی اعلیٰ مثال تھے. پوری صورت میں ان کو یہ لقب ملتا رہے گا کہ یوسف علیہ السلام محسنین میں سے تھے. ان کی پاکیزگی ان کے رویے سے بولتی تھی. اس عورت نے کوشش کی لیکن ولقد ہمت بہی وہم بہا لولا را برہان ربہ, یعنی اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نیک لوگوں کو برائیوں سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے گویا کے مکھن میں سے بال. پھر آیت نمبر 30 سے 32, بیگماتے مصر کا مکرو فریب, یعنی اس دور کی لیڈیز جو ایسی پارٹیز اور دعوتوں میں اس قسم کی بیکار باتوں میں وقت ضائع کرنے والیاں تھیں, انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ اسی قسم کی باتیں کی گئیں. کہ وقال نسوۃن فی المدینۃ امراۃ العزیز تراود فتاہ عن نفسی, یعنی اسکینڈلس اور باتیں اور خام خواہ کی ایوننگ نیوز سٹائل باتیں خبریں. 33 سے 35, اللہ کی توفیق کے بغیر پاکیزہ رہنا ناممکن ہے, اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے یوسف کو دی تھی. آج ہمارے جوان بچے, جوان شوہر, ان کو بھی اگر باہر کے فتنوں سے بچانا ہے تو ان کے دل میں یہی ایمان اور تقویٰ بھرنا پڑے گا. حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام نے تو قید قبول کر لی ایسے دل پھینک ماحول سے. یہ بہتر ہے کہ اللہ مجھے لاک ڈاؤن میں کر دے تاکہ نہ میں یہ گندگی دیکھوں اور نہ میرا دل ادھر سے ادھر جائے. قال رب بالسجن احب الی مما یدوننی الی, اور خوف اتنا ہے کہ ویلا تصرفنی کیدہن اسب الیہن وکو من الجاہلین. جوان تھے, مرد تھے, انسان تھے, اٹیمپٹ ہو سکتے تھے لیکن ٹریپ بھی ہو سکتے تھے, لیکن اللہ ایسے اپنے نفس کو خود باندھنے والوں کو پھر ضرور بچاتا ہے. آئی 36, دو قیدیوں کے خواب. اچھا بندہ کہیں بھی چلا جائے یا بھیج دیا جائے وہ وہاں بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے. یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی اپنی جگہ بنا لی, اور دو ایسے قیدی جن پہ قتل کا الزام تھا وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. پھر 37 سے 40, قید خانے کا حکیمانہ واز. ہر وقت کی تبلیغ نہیں کی لیکن جب ان کو آپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر ان سے اجازت لی, اور پھر بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ کی طرف دعوت دی. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرت ہم کافرون. اللہ تعالی ہمیں تبلیغ کی یہ حکمتیں عطا فرمائے. پھر 41 سے 42, قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں. یا صاحب یسجنی اما احدکما فیسکی ربہ خمرہ. تو یہ محسنین ہوتے ہیں جو چھپاتے نہیں بلکہ اچھے طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. 43 سے 44, بادشاہ کا خواب, یعنی پہلے تو قیدیوں نے خواب دیکھا پھر بادشاہ نے دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرک کا خواب بھی سچ ہو سکتا ہے, اور چاہے مسلمان کا خواب سچ نہ ہو اور بہت عرصے بعد پورا ہو, کسی کا فوراً پورا ہوتا ہے. تو خوابوں کا ایک پورا علم ہے, اس کو صحیح طریقے سے قرآن سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. آیت 45 سے 49, बादशाह के ख्वाब की ताबीर, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ यह है कि ताबीर बताई बल्कि तदबीर भी बताई, और कोई क्रेडिट नहीं लिया कि तुम क्यों बताते हो, मैं बताता हूँ, तुम्हें याद नहीं रहा मैंने तुम्हें काम दिया था। हम तो ऐसे ताने देने लग जाते हैं जिस वक्त मोहसिन बनने का वक्त होता है, और मदद अल्लाह की मोहसिनों को आती है। फिर इसी तरह से 50 नंबर आयत, बादशाह की तलबी और यूसुफ का इनकार। यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरे ऊपर लगा हुआ झूठा इल्ज़ाम साफ हो फिर निकलूंगा, क्योंकि इन्होंने कल वहाँ दीन का काम करना था, और दीन वाले पर जब इल्ज़ाम लग चुका होता है तो फिर वो उसके दीन को नुकसान देता है। तो बहरहाल बादशाह ने फिर पूरा मामला खुलवाया और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए। आयत 51 से 53, बेक माते मिस्र की हज़रत यूसुफ के हक में गवाही, यानी वो सारी ही बोल उठी कि हकीकत यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे थे और उन्होंने उनके हक में गवाही दी। और फिर आगे हज़रत यूसुफ के लिए मनसबे खास मिलेगा उनको, ये हम अगले पारे में 54 से 57 में देखेंगे। अल्लाह ताला ने इसमें आपके मेरे लिए जो हिदायत रखी हैं उसमें से पहली हिदायत ले लीजिए, आयत 33 में, यूसुफ अलैहिस्सलाम का आजिज़ाना तर्ज़ अमल। जिनमें कोई खूबी होती है ना वो ज़्यादा उछलते नहीं हैं, उछल उछल कर नहीं लोगों को दिखाते कि हम ऐसे और हम वैसे। यूसुफ अलैहिस्सलाम में ये सब कुछ था। क़ाला रब्बि सिज्नु अहब्ब इलैया मिम्मा यदूननी इलैह व इल्ला तस्रिफन्नी कैदहुन नस्बु इलैहिन्न वाकुम मिनल जाहिलीन। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुलाती हैं इसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, क्या आज के यंग ऐसा करें? और ख़ास तौर पर जब वेस्ट में, कितनी तो दलीलें दे सकते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने इस गुनाह में अगर चले जाते तो। उसकी अकेले भी हैं, अनमैरिड भी हैं, औरत पहल कर रही हैं, गुलाम हैं, घर में हैं, क्या कुछ नहीं था। आज वो लोग, वो लड़के जो जवानी के नशे में और ख़ास तौर पे छोटी उम्र में बाहर के मुल्कों में आकर इन फितनों का शिकार होते हैं, उनके लिए हज़रत यूसुफ के किरदार में बहुत बड़ी नसीहत है। आयत 40, हाकमियत अल्लाह ही के लिए है, यानी दुनिया में अगर मालिक वो है, खालिक वो है, तो हाकिम भी वही है, क्योंकि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। आज देख लीजिए हुक्म उसी का चलता है, कल भी उसका चलता है, था है और रहेगा। तो फिर आप में अपनी ज़िंदगी में उसके हुक्म के ऊपर क्यों नहीं चलते? अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि वो हमारा दिल दिमाग खोल दे। तो ये थी सूरत यूसुफ की कुछ बातें, बाकी इंशाल्लाह अगले पारे में करेंगे। आज की हदीस ले लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, जिस शख्स को कुरान और मेरा जिक्र इतना मशगूल कर दे कि वो मुझसे मांग भी ना सके, यानी कुरान पढ़ने में इतना दिल लग रहा है कि दुआ मांगने का वक्त नहीं मिल रहा, तो मैं इसे मांगने वालों से भी ज़्यादा अता फरमाता हूँ, ये तिर्मिज़ी की रिवायत है। तो अल्लाह ताला आप सबसे भी राज़ी हो, जो वक्त दुआ में लगाना होता है उसको भी इस कुरान के पढ़ने सुनने में लगा दीजिए। सवाल जवाब जो भी किसी के जहन में हैं तो आप पूछ सकते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।